रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूं। उठो, हम यहां से चलें।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
इस दिव्य संस्कार में करते हैं तेरे आराधना, मन मंदिर में दीप जलाकर करते प्रभु तेरी आराधना।
इस दिव्य संस्कार
ईश्वर मेरे प्रभुवर सुख शांति का झरना है तू शीश झुका कर करते नमन बरसा प्रभु तेरे आशीष पार स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी तू है प्रभु तू है प्रभु हर पल हो तेरी आराधना हर दिल करे तेरी पूजा प्रभु
स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी तू है प्रभु
इस दिव्य संस्कार में करते हैं तेरे आराधना मन मंदिर में दीप जलाकर करते प्रभु तेरी आराधना
इस दिव्य संस्कार
स्वागत है साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास ईशा की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास
युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत दूसरों के बारे में भी सोचें बातचीत में भाग ले रही हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजेस लेखक माइकल हॉजेस युवा और विकास सुनने वाले सभी युवा साथियों को
अपर्णा सिंह और
माइकल हॉजिस का
नमस्कार
युवा साथियों से बातचीत की शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारे युवा साथी भी इस बात को जानते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा ही बनाया है और हम सभी को उसने एक ना एक वरदान तो दिया ही है
बिल्कुल सही और अगर उसने किसी और बात में कोई कमी दी है तो उस कमी को कोई और गुण या कोई और विशेषता देकर उसे पूरा भी किया है इसलिए उसने हम सभी को विशेषकर युवाओं को अपनी अपनी क्षमताओं से नवाजा है और उन क्षमताओं से किसी उपलब्धि को पा लेने के लिए अवसर भी समान रूप से प्रदान किए हैं
जी अपर्णा जी और मैं रहूं या मैं पाऊं यानी स्वार्थ की भावना और किसी भी जाति के प्रति वर्ग के प्रति या फिर किसी वर्ण के प्रति भेदभाव या उनसे नफरत करने की इजाजत उसने बिल्कुल नहीं दी है।
और माइकल जी, यदि किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ का हम अध्ययन करें तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आती है कि कोई भी धर्म अब हमें आपस में लड़ना और बैर रखना या फिर किसी को अपने से नीचा समझने की शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं देता है।
अपर्णा जी, आज हमारे समाज में और देश में जो भी अराजकता या सामाजिक अव्यवस्था चल रही है वह किसी धर्म की देन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म इस तरह की हिंसा की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं देता।
लेकिन फिर माइकल जी, समाज में फैली इस हिंसा और अराजकता का कारण आखिर क्या हो सकता है?
देखिए अपर्णा जी, यह बात तो निर्विवाद है कि किसी भी समाज और देश की ताकत युवा ही होते हैं। युवा अगर चाहे तो दिन निकलता है और अगर युवा चाहे तो रात होती है, यानी अगर युवा चाहे ठान ले तो शांति रहती है और अगर युवा चाहे तो वह शांति पैदा कर सकता है।
और माइकल जी, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि शक्ति का ही दूसरा नाम है युवा, और ये युवा ही होते हैं जो चाहे तो समाज की शांति भंग कर दे और चाहे तो समाज में शांति बनी रहे। लेकिन माइकल जी, क्या आपको नहीं लगता कि युवा अक्सर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं?
आपका कहना एक सीमा तक सही है, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध आवाज जरूर उठाना चाहिए, वरना शोषण अपनी चाल चलता रहता है। लेकिन मैंने एक सीमा तक ये सही है ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आजकल ये देखने में आता है कि कुछ युवा, ध्यान रखिए मैं कुछ युवाओं की बात कर रहा हूं, तो कुछ युवा सही बात पर भी अपना विरोध प्रकट करने लगते हैं और समाज तथा अन्यों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं।
जी हाँ, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर नाज होता है और तब वे अपनी शक्ति प्रदर्शन से पीछे नहीं हटते, और फिर चाहे बात सही हो या गलत। लेकिन माइकल जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के युवक, जिन्हें आपने कुछ युवा कहा था, ऐसे युवा पथभ्रष्ट युवा होते हैं, कि वे बरगलाए हुए युवा होते हैं? और माइकल जी, इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप?
आपका कहना बिल्कुल सही है अपर्णा जी, क्योंकि कुछ युवा वास्तव में बरगलाए या अपने वास्तविक मार्ग से भटके हुए युवा होते हैं। इन्हें केवल और केवल उनकी शक्ति का ही एहसास कराया गया होता है और ये एहसास करा दिया गया होता है कि आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, आपको बस उतना ही करना है जितना आपको कहा जाए।
यानी कि उन्हें स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने हाथ की शक्तिशाली कठपुतलियां बना लिया जाता है। लेकिन कुछ युवा बिना किसी के हाथों की कठपुतली हुए ही इतने उग्र क्यों होते हैं कि वे भी अपने जीवन में कोई न कोई अनर्थ कर बैठते हैं?
आपने सही कहा अपर्णा जी, कुछ युवक ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितिवश अपना आपा, अपना विवेक होकर कुछ न कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो समाज की नीति और कानून को या कानून के विरुद्ध होता है। इसके बाद वे पछताते भी हैं, लेकिन तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी होती है।
जी हाँ, और यदि तनाव के क्षणों में ऐसे युवा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते तो उन्हें उस हादसे से यूं दो चार नहीं होना पड़ता। तो माइकल जी, क्यों ना उन बातों पर भी गौर कर लिया जाए कि अपनी शक्ति के दम या घमंड में युवा बरगलाने पर या अपने उग्र स्वभाव के कारण समाज में अशांति का कारण बनते हैं।
अशांति का कारण बनते हैं और इतने स्वार्थी हो जाते हैं अपर्णा जी कि फिर दूसरों के बारे में वे बिल्कुल भी नहीं सोचते, उन्हें केवल और केवल मरने या मारने की ही सूझती है।
जी हाँ, तो माइकल जी, शुरुआत करते हैं कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज में युवा ही युवा पढ़ते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और कॉलेज में तो आजकल लड़का लड़की का भेद भी मिट गया है, ये बात लड़कियों द्वारा लड़कों की रैगिंग लेने से साबित हो जाती है।
जी हाँ, अब कोई लड़का या लड़की कितने अरमानों से कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, कितने सपने उन्होंने अपने कॉलेज के जीवन को लेकर देखे होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हॉस्टल में या फिर कहीं कमरा लेकर अपना खाना खुद बनाकर अपनी पढ़ाई पूरा करने का सपना लिए घर से दूर आते हैं, लेकिन
उनके सपने तब दरक जाते हैं जब उन्हें कॉलेज में अपने सीनियर्स की रैगिंग का सामना करना पड़ता है। और आपको याद होगा माइकल जी कि इसी वर्ष रैगिंग से परेशान होकर इंदौर जैसे महानगर में 2-3 छात्रों द्वारा आत्महत्या की जा चुकी है, और क्योंकि वे कुछ युवाओं की अवांछनीय शक्तियों से हार गए थे।
जी हाँ, क्योंकि कुछ युवाओं ने उनके और उनके सपनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। उन्होंने तो सोचा था केवल और केवल अपनी शक्ति के बारे में और उस शक्ति को कहां और कैसे उपयोग करना है, सिर्फ उस बारे में।
और माइकल जी, मुझे एक वाकया याद आ रहा है उस समय का, जब कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे और उस समय कॉलेज में विरोधी पार्टी में एक अन्य विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरह से पीट दिया था क्योंकि उसके छात्र संघ के चुनाव में जीतने के पूरे पूरे आसार थे।
मतलब यहाँ भी बात अपने स्वार्थ की थी, सिर्फ मैं की थी कि कोई दूसरा चुनाव क्यों जीते, मुझे ही जीतना है, फिर चाहे मैं अन्य सब छात्रों की पसंद हूं या नहीं। पीटने वाले उम्मीदवार छात्र और उसके साथियों ने भी उस छात्र के बारे में नहीं सोचा कि उसके जीतने के आसार इसलिए होंगे क्योंकि वो अन्य सब छात्रों की पसंद होगा और हर तरह से विजयी होने के योग्य ही होगा, तभी तो उसके जीतने के पूरे आसार थे।
युवा शक्ति का दुरुपयोग और कई मामलों में भी देखने को मिलता है माइकल जी। अब जैसे किसी लड़की के मामले को ही ले लेते हैं हम, कि एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी लड़की को एक अन्य लड़का भी प्रेम करता था। अब उस लड़के का प्रेम एक तरफा ही था क्योंकि लड़की उस लड़के को नहीं चाहती थी कि वो किसी और लड़के से ही प्रेम करती थी।
ये तो अक्सर ही देखने सुनने को मिल जाता है अपर्णा जी। फिर
तो इस एक तरफा प्रेम करने वाले लड़के को जब ये पता चला कि वो लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती है, तो पहले तो उसने अपने साथियों के साथ उसे रास्ते में रोककर धौंस दिया कि उससे मिलना और बात करना वो बंद कर दे।
अच्छा अच्छा, फिर?
और जब उस लड़के ने ऐसा नहीं किया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दिन अपने प्रतिद्वंदी की बुरी तरह से पिटाई कर दी और इतनी बुरी तरह से कि उस पिटने वाले लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था माइकल जी। अच्छा, क्या आप इसे युवा शक्ति का दुरुपयोग नहीं मानेंगे?
बिल्कुल अपर्णा जी, बिल्कुल, ये युवा शक्ति का दुरुपयोग ही है और साथ ही दूसरों के बारे में नहीं सोचने की ओर इशारा भी है। साथ ही अपनी इच्छा को दूसरों पर लादने का भी एक उदाहरण है। जब मीठी मीठी बात से काम ना चले तो शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा को लादने और अपनी बात को मनवाने की घटना है ये।
जी हाँ, क्योंकि जब उस लड़के को ये पता चल ही गया था कि वो लड़की उसे नहीं किसी और को प्रेम करती है, तो उस लड़के को लड़की की इच्छा और भावनाओं का सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि अपनी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए था और उसकी राह से हट जाना चाहिए था।
बिल्कुल हट जाना चाहिए था अपर्णा जी, लेकिन उसने ऐसा न करके अपने नाकाम प्रेम का बदला लिया। जबकि अपर्णा जी, आप और हमारे अधिकतर श्रोता इस बात को जानते हैं कि प्रेम का दूसरा पहलू त्याग है, बदला नहीं। और जो बदला लेता हो, मेरे ख्याल से कम वो प्रेम नहीं करता।
जी बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे इंसान इस सिद्धांत का ही पालन करते दिखाई पड़ते हैं कि अगर तुम हमसे प्रेम करोगे तो हम भी तुमसे प्रेम करेंगे, वरना तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे हम। और माइकल जी, ऐसा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मजा तो तब है, महानता तो तब है कि जो हमसे नफरत करता है या हमें नापसंद करता है, हम उसे भी प्रेम करें और उसकी खुशी चाहें।
आपने बहुत बड़ी बात कही अपर्णा जी, यही बातें इंसान को महान बनाती हैं। फिर प्रेम जैसे विषय में जबरदस्ती का नहीं, इच्छा और भावनाओं का समावेश होता है, इसलिए जबरदस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता।
बिल्कुल माइकल जी, इसी प्रकार से हम नौकरी के विषय को ले लें अब, और कहीं नौकरी है, कोई जगह खाली है, सुनकर युवा उसे पाने की होड़ में लग जाते हैं और ये अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है माइकल जी कि कुछ युवा उस नौकरी को पाने के लिए मेहनत भी करते हैं, अपने आप को उस नौकरी को पाने के लायक बनाते हैं, लेकिन
वहीं कुछ युवा उस नौकरी को पाने के लिए अपने आप को योग्य बनाने की बजाय, तैयारी करने की बजाय, उस नौकरी को पाने की जोड़ तोड़ में लग जाते हैं। ये उनकी सबसे बुरी बात और आदत होती है।
जी हाँ माइकल जी, ऐसे युवा भी तैयारी और मेहनत करने वाले युवाओं के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वे स्वार्थी बनकर केवल और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं कि बस किसी तरह से मैं कैसे ये नौकरी पा जाऊं।
लेकिन अपर्णा जी, ऐसे युवाओं के नौकरी पा लेने के बाद क्या हाल होते हैं, हम जरा उस पर भी बात करते चलें।
जी हाँ बिल्कुल
अपर्णा जी, ऐसे युवा जो उस पद के लायक ही नहीं होते और जोड़ तोड़ कर नौकरी पा जाते हैं, वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता को बढ़ाने की कोई तैयारी जो नहीं की होती है। ऐसे युवा चूंकि अपना काम योग्यता पूर्ण ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उन्हें पदोन्नति भी समय पर नहीं मिल पाती है
और इसीलिए ऐसे में इन्हें फिर कोई जोड़ तोड़ का खेलने में लग जाना पड़ता है, जिसमें वे कभी असफल रहते हैं तो कभी सफल भी हो जाते हैं। और एक बात और माइकल जी, कि यदि ऐसे युवा गाहे बगाहे पदोन्नति पाकर ऊपर उठ भी जाते हैं और इन्हें किसी नए उम्मीदवार का चयन करने की जिम्मेदारी होती है, तब भी ये जोड़ तोड़ करने वाले उम्मीदवार का चयन करके उसी का या उसी को प्राथमिकता देते हैं और इस तरह से अपनी कंपनी, संस्था या विभाग का बंटाधार कर देते हैं।
कारण वही है अपर्णा जी, कि ऐसे युवा अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है जो इनसे कहीं अधिक योग्य है।
जी हाँ, और माइकल जी, यदि हम युवा शक्ति के दुरुपयोग और उनके अपने सिवा किसी और के बारे में न सोचने पर विस्तार से दृष्टि डालें, तो राजनीति के क्षेत्र में हमें इस विषय में मुझे लगता है बहुतायात सी देखने को मिल जाएगी।
आपने बिल्कुल सही कहा अपर्णा जी, राजनीति का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं की शक्ति का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है, क्योंकि राजनीति युवाओं का हमेशा से एक आकर्षण रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, और क्योंकि इसमें प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन और आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ बंद, हड़ताल और तोड़फोड़ में अपनी पूरी शक्ति लगाने का अवसर मिलता है और इसमें उन्हें भीतर के आक्रोश को जो है बाहर निकालने और मौज मजा करने के पूरे अवसर भी मिलते हैं।
क्योंकि युवाओं का खून गर्म होता है, इसलिए यहाँ भी वही बात होती है कि मैं ही मैं, दूसरा न कोई या हम ही हम कोई और नहीं, इसलिए युवा मन अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता न होता है। वह हर कीमत पर अपने आप को विजेता के रूप में देखना चाहता और पसंद करता।
जी हाँ, और ये बात हम राजनीतिक नेता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय युवाओं के लिए कह रहे हैं माइकल जी। हाँ, और राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता युवाओं का विरोधी दल के युवाओं से झड़प या मारपीट को जाना मामूली सी बात हो गई है, वे आजकल जरा सी बात पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।
यही नहीं अपर्णा जी, बंद के दौरान यही युवा जबरदस्ती व्यापारी और दुकानदारों से उनकी दुकान और संस्थान बंद कराते हैं, लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुओं से दूर रखते हैं।
बिल्कुल, और यहाँ तक कि उन मजदूरों के बारे में भी नहीं सोचते हैं माइकल जी, जो रोज कुआं खोदते और पानी पीते हैं, यानी कि रोज कमाते और खाते हैं। बंद होने के कारण उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है और उन्हें उस दिन तक भूखे रहना पड़ जाता है।
यही नहीं अपर्णा जी, इनके बंद के दौरान सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को उठानी पड़ती है तो वो मरीजों को उठाना पड़ती है। बंद में वे न डॉक्टर को अपनी बीमारी दिखा सकते हैं और न बीमार दुकान से अपनी दवाई ले सकता।
और इसके अलावा माइकल जी, ये बात भी देखने में आई है कि यदि किसी के मरीज की डॉक्टर की लापरवाही या अस्पताल से संबंधित किसी कारण से मौत हो जाती है, तो मरीज के संबंधी, विशेषकर युवा और उनके साथी संबंधित अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। वे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि उनकी इस हरकत से दूसरे मरीजों को कितनी ज्यादा तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती होगी।
इसलिए युवा साथियों, हम अंत में आपसे इतना ही कहेंगे कि वास्तव में वही इंसान होता है जो दूसरों की दुख तकलीफ को समझे और जाने,
और वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और संवेदनाओं तथा भावनाओं से भरा भी होता है, जो दूसरों के बारे में भी सोचता और
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।
सरल होके पाएंगे हम स्वर्गलोक जो। बालकों के संग सरल हो के पाएंगे हम स्वर्ग लोक जो परम। नन्हे बच्चों से मासूम हो हर्षित यीशु को करेंगे हम। नन्हे बालकों के संग सरल हो के पाएंगे हम स्वर्ग लोक जो परम।
अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है RVA हिंदी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RVA हिंदी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satyaswar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो RVA मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं। फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।